ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद है छठा अध्याय 12 वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु श्लोक संख्या है 15। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणां तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद सनबध्यते। शब्दार्थ बोलिए। सत्वं सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, इति इस प्रकार, प्रकृते भौतिक प्रकृति के, ना नहीं, आत्मनः आत्मा के, गुणाः गुण, तत्र ऐसी स्थिति में, साक्षिणं गवाह है, साक्षी, आत्मानं आत्मा, यह जो कोई वेद जानता है, सह वह, न नहीं, बध्यते बंधता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो पुरुष यह जानता है कि सतो रजो तथा तमोगुण ये तीनों आत्मा के नहीं वरन भौतिक प्रकृति के गुण हैं, जो यह जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्म तथा बंधन का साक्षी मात्र है, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। वह इन गुणों से बंधा नहीं रहता। तो आप लोगों को कथा का प्रसंग तो पता होगा। कितने लोगों को कथा का प्रसंग पता है? बहुत कम लोगों को। तो जो लोग रोज सुनते हैं उनको पता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो कथा का प्रसंग है वो ये है कि वृत्रासुर ने जो है देवताओं पर आतंक मचा दिया। तो इस कारण से देवता लोग भगवान की शरण में गए और भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम लोग दधि चमुनि के पास जाओ और उनसे उनसे प्रार्थना करो कि अपना शरीर छोड़ें और उनके हड्डियों से वज्र बनाया जाए, है ना। तो विश्व फिर दधि चमुनि ने अपना शरीर छोड़ा और देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने दधि चमुनि की हड्डियों से वज्र बनाया और अब वज्र लेकर के इंद्र वृत्रासुर से युद्ध कर रहे हैं, है ना। लेकिन वृत्रासुर को पता है कि वज्र के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, जबकि जितने ही देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे, जब देवताओं ने उनके ऊपर चलाए तो वो खा गए। सोचिए कितना बलवान वृत्रासुर, खा गए सब अस्त्र शस्त्र, खा गए वृत्रासुर। और देवता एकदम घबरा गए, क्या हो रहा है, क्या हो गया। उनके सब अस्त्र शस्त्र भी चले गए और वृत्रासुर जो है खड़े ही युद्ध के लिए, आओ अब क्या युद्ध हो। तो सब देवता भगवान के पास गए और भगवान के आदेश से दधीचि मुनि के जो है हड्डियों से जो वज्र बना, अब वज्र लेकर के इंद्र आए हैं और वृत्रासुर के साथ युद्ध कर रहे हैं। और वृत्रासुर के साथ युद्ध करते समय क्या हुआ कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट के गिर गया, है ना। तो उस समय जो है इंद्र को अब लज्जा आ रही है और वे जो है अब युद्ध करने से उनको संकोच हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वृत्रासुर इंद्र को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो पहली बात उन्होंने ये बताई कि तुम वज्र उठाओ, तुमने जिस प्रकार से गदा का प्रहार किया था मेरे ऊपर, तो गदा का प्रहार निष्फल हुआ, उस प्रकार से वज्र का प्रहार निष्फल नहीं होगा, हाँ, तुम चिंता मत करो, पहली बात तो यह बताई। और दूसरी जो शिक्षा थी वो क्या थी कि जो है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, जो जन्म है मरण है सुख है दुख है इन सब में व्यक्ति को समान होना चाहिए। और मैं किस प्रकार से मृत्यु से नहीं डरता हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, है? तो इस तरह से जो है वृत्रासुर इंद्र को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। अब सोचिए कितने आश्चर्य की बात है कि देवताओं का जो राजा है, देवता उन्हें कहते हैं जिनके पास देवी गुण हो, असुर उसे कहते हैं जिसके पास आसुरी गुण हो, है ना। तो असुर, एक असुर जो है देवताओं के राजा को ज्ञान दे रहा है, और कौन सा ज्ञान दे रहा है, भगवत गीता का, भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, बिल्कुल भगवत गीता के धरातल पर जो उपदेश है, सत्वम रजस्तम इति, है ना, प्रकृति ऋणात्मन गुणा। और गीता में भगवान कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, शब्द बहुत मिलते हैं, है ना। नमदनंति महाबाहु देहे देहि नम अभिजन, बहुत मतलब भगवद गीता के श्लोक जो है इनसे मिलते हैं, इस श्लोक से मिलते हैं। तो सोचिए, और एक बात यह भी है कि भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और ये उपदेश भी युद्ध भूमि में दिया जा रहा है, आप सुन रहे हैं युद्ध भूमि में ही उपदेश दिया जा रहा है, है? और बिल्कुल गीता का ही उपदेश है, है ना। लेकिन यहां पर वृत्रासुर इंद्र को उपदेश दे रहा है युद्ध भूमि में। एक अंतर यह है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, किस लिए, उन्हें थोड़ी डर था मरने से, है? उनको तो दया आ रही थी। लेकिन यहां पर अंतर है, इंद्र को जो है डर लग रहा है वृत्रासुर, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते, अंतर है ना, एक ही अंतर है कि इंद्र जो है अपने जो है मरने के डर से युद्ध नहीं करना चाहते, कि ये तो मुझे मार डालेगा, इसलिए डर रहे हैं वृत्रासुर। और अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अपने मरने का डर नहीं है, वो तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मुझे ये पाप ना करना पड़े, मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो अंतर है, ये अंतर है ना। लेकिन गीता का उपदेश वही है, उपदेश वही है ना। और जैसे अर्जुन ने भगवान से उपदेश प्राप्त किया गीता का, है ना, तो एक शिक्षा की अलग ही परंपरा है, शिक्षा की अलग ही परंपरा है। अर्जुन ने जो है गुरु प्राप्त किए द्रोणाचार्य के रूप में, और शिक्षा दीक्षाएं सब प्राप्त की, सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त की द्रोणाचार्य से। लेकिन भगवद गीता का जो उपदेश है वो भगवान कृष्ण से प्राप्त किया युद्ध भूमि में, वो ऐसे समय में जो कि वैसे वैसा समय थोड़ी है, उपदेश का समय थोड़ी होता है ये, है? और कोई ऐसी विधि का भी पालन नहीं हो रहा है, कि जैसे मैं बैठा हूं व्यासन पर, आप लोग नीचे बैठे हैं, वो भी उस तरह से भी नहीं है, है? अर्जुन सार भगवान कृष्ण सारथी के स्थान में है, अर्जुन जो है रथी के स्थान में है, एक प्रकार से सेवक भगवान सेवक के स्थान में है, अर्जुन स्वामी के स्थान में है, और उपदेश दिया जा रहा है। तो शिक्षा इतनी जरूरी है, ये जो शिक्षा है भगवद गीता की इतनी जरूरी है कि युद्ध भूमि में जो है ऐसी स्थिति में उपदेश दिया जा रहा है जहां की कुछ नहीं है, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि इस तरह से जाएं प्रणाम करें प्रश्न करें, एकांत स्थान हो, हल्ला गुल्ला ना हो, बाजार का शोरगुल ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों सेनाओं के बीच में। और यहां पर भी वृत्रासुर जो है उपदेश दे रहे हैं इंद्र को, तो वो भी वैसी स्थिति है, बिल्कुल मरने मारने की स्थिति में जो है उपदेश दिया जा रहा है। तो ये उपदेश इतना जरूरी है, इतना आवश्यक है, कि इसके लिए वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना, कभी ये काम हो जाए तब मैं ये उपदेश प्राप्त करूंगा, अभी ये काम हो जाए, अभी ये काम हो जाए, अभी गृहस्थी का सब काम जो है मतलब पूरा हो जाए तब मैं जो है उपदेश प्राप्त करूंगा गीता का, या जो है लड़की की शादी हो जाए, लड़का की शादी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए तब मैं गीता का उपदेश प्राप्त करूंगा, ये नहीं है। गीता का उपदेश उसी प्रकार से जैसे आपकी श्वास जरूरी है, कि श्वास के बिना आप नहीं रह सकते। अर्जुन को जो है इतनी आवश्यकता पड़ गई, कि इसके बिना उनको जो है किसी प्रकार से शांति नहीं प्राप्त हो सकती है ना। तो इंद्र को भी जो है वृत्रासुर उपदेश दे रहे हैं, तो हम समझेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद देखिए, भगवान ने भगवत गीता 1854 में व्याख्या की है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मन भक्तिम लभते पराम। इंद्रियातीत मनुष्य को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, वह न शोक करता है और न इच्छा ही करता है, वो सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था के बाद कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग प्राप्त करता है। तो ये भगवान ये प्रभुपाद जो है इस श्लोक को क्यों उद्धृत कर रहे हैं? इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि ये नहीं समझना कि इस श्लोक में जो ज्ञान है तो इसके आगे और कुछ नहीं है, कि जब आप गुणों से नहीं बंधते हैं तो यहीं पर ही आपकी गाड़ी रुक गई और अब जो है आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब आप ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाते हैं, तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तब क्या होता है? तब आप जो है मद भक्तिम लभते पराम, तब आपको पराभक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है ना। समझना चाहिए। और गीता के चौथे अध्याय में, चौदहवें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति अभिविचारिणी भक्तियों के द्वारा मेरी सेवा करता है वो तीन गुणों से अपने आप मुक्त हो जाता है, उसको प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है ना। तो जो असली लक्ष्य है वो कृष्ण की सेवा करना है ना। तो यहां मतलब उपदेश समाप्त नहीं होता, यहां पर बात समाप्त नहीं होती है, जब तक कि आप कृष्ण की सेवा में नहीं लग जाते हैं। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं आगे, आत्म साक्षात्कार हो जाने पर अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था में मनुष्य जानता है कि जीवन काल में जो भी घटित होता है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के दूषण यानी कलमश से ही होता है ना। तो ये समता की स्थिति, यहां वृत्रासुर जो इंद्र को समझा रहे हैं, तीन गुणों की बात जो बतला रहे हैं वो किस लिए बता रहे हैं? ये समता प्राप्त करने के लिए, कि जो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, मान अपमान होते हैं, सुख दुख होते हैं, सफलता असफलताएं प्राप्त होती हैं, तो इनमें व्यक्ति कैसे समान रहे? प्रकृति ऋणात्मक गुणा, प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कार्य हो रहे हैं, आत्मा के द्वारा नहीं हो रहे हैं, आत्मा साक्षी मात्र है। और ये जो शरीर है ये पहले से ही बना है प्रकृति के गुणों के द्वारा, और इसमें कर्मों के अनुसार जितने सुख दुख मान अपमान ये सब निश्चित हो चुके हैं पहले से। तो एक प्रकार से समझो कि प्रकृति गुणों के द्वारा ही जो है ये शरीर बना है, और जो जो भी स्थितियां उतार चढ़ाव की हैं इस जीवन काल में पहले से निश्चित हो चुकी हैं, है ना। इस प्रकार से आपको जो है जीवन में समान रहना है, समता का अभ्यास करना है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा जो शुद्ध आत्मा है उसको इन गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं, भौतिक जगत के झंझावात में सब कुछ तेजी से बदल जाता है ना। सब कुछ तेजी से बदल जाता है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, झंझावात में तेजी से बदल जाता है। झंझावात क्या बोलते हैं, क्या है झंझावात? आंधी, आंधी तूफान, आंधी तूफान आए तो सब कुछ तेजी से बदल जाता है। कितने पेड़ जो है गिरे हुए दिखाई देते हैं सड़कों में, सब रास्ते बंद हो गए, तार हैं बिजली के तार हैं वो गिरे हुए हैं इधर उधर, है ना। कभी कभी मकान तक भी गिर जाते हैं, तो क्या क्या मतलब हो जाता है। तो बड़ी तेजी से बदलता है ना। इसी प्रकार से जो भौतिक जगत है ये काल का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है, बहुत तेजी से, है ना। तो जब कोई व्यक्ति शरीर से ऊपर उठता है तो फिर उसके लिए ये जो जीवन है वो बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से गुजर रहा है ना, पता नहीं चल रहा कितनी जल्दी साल बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, कितनी जल्दी बीत रहे हैं और कितनी जल्दी मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूं। तो ये जो दृष्टि है, जब कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो उसको ये दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग इस शरीर में बंधे हुए हैं उनको तो लगता है टाइम नहीं कट रहा है, समय नहीं बीत रहा है, दिन नहीं कट रहे हैं, रातें नहीं कट रही हैं, कैसे दिन काटे हैं, कैसे रात काटे हैं, मौत तो है ही नहीं, मौत तो है ही नहीं, कब मौत आएगी? और जब मौत आती है तो पता चलता है कि कितनी जल्दी मौत आ गई, पता ही नहीं चला, जिंदगी में कुछ तैयारी नहीं की मृत्यु की। तो जब जीवन निकल जाता है तब पता चलता है कि जीवन कितनी जल्दी निकल गया। लेकिन जब जीवन काल होता है, जीवन काल में लगता है कि तू जिंदगी बीत नहीं रही है, समय कट नहीं रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, कैसे टाइम पास करें। टाइम पास करने के कई कई तरीके लोग जो है सोचते हैं, पूछते हैं, पता लगाते हैं, बताते हैं। तो यही चल रहा है भाई, टाइम कैसे पास किया जाए, टाइम कैसे पास किया। और टाइम कितनी तेजी पास हो रहा है, झंझावात की तरह है, आंधी तूफान मतलब सब कुछ तहस नहस कर देता है। यही है मृत्यु, है ना, सब कुछ तहस नहस कर देता है। अभी वृद्धावस्था आई, शरीर की सब जो है जो संधियां हैं वो ढीली पड़ गई हैं, जोड़ सब ढीले पड़ गए हैं। अब उठने में, बैठने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, देखने में तकलीफ होती है, खांसने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सब खराब हो रहा है शरीर। लेकिन जिस समय बचपन की स्थिति होती है, टाइम नहीं कट रहा है, जवाने की स्थिति में टाइम नहीं कट रहा है, टाइम काटो टाइम काटो, कैसे टाइम काटें, कैसे टाइम काटें, है ना। लेकिन बड़ी तेजी से जो है ये झंझावात है, ये आंधी तूफान है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत के झंझावात में सब कुछ तेजी से बदल जाता है, किंतु यदि कोई मौन रहकर झंझावात के कर्मों तथा बंधनों का निरीक्षण करता है तो उसे मुक्त हुआ समझिए। मौन रहकर, यहां प्रभुपाद क्या लिखते हैं, मौन रहकर के निरीक्षण करना है ना। तो मौन रहकर के निरीक्षण करना है ना, मतलब क्या है कि सुख और दुख में मौन रहना, मान अपमान में मौन रहना, मतलब केवल ये देखो कैसे बदल रहा है, कितनी जल्दी बदल रहा है, मान अपमान है, मान की स्थिति सम्मान में बदल जाती है, सम्मान की स्थिति अपमान में बदल जाती है ना। इसको देखो कि कैसे बदलता है। तो जो व्यक्ति मौन रहता है, मौन रहने का मतलब यही है जो देखता है ना, जो मौन नहीं रहता है तो सम्मान, इतना सम्मान मिला और इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला, अभी और सम्मान मिलेगा, अभी और सम्मान मिलेगा, अपमान मुझे अपमान मिल गया, मुझे मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान क्यों हो रहा है, मेरा अपमान, सुख इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है, दुख इतना दुख मिल रहा है, क्यों दुख मिल रहा है, क्यों दुख मिल रहा है, उसी में ही संघर्ष, उसी में वो चिपका हुआ है ना। तो उसको कहते हैं मतलब वो मौन नहीं है, वो देख नहीं रहा है कि सब बदल रहा है। तो वो उसी स्थिति को नित्य मान लेता है, नित्य स्थिति कि सुख मिला ये नित्य नित्य है, हमेशा के लिए मुझे सुख मिला है, अभी जाएगा नहीं, जबकि तो जा रहा है, बड़ी तेजी जा रहा है ना। तो इसका मतलब यह है, प्रभुपाद कहते हैं मौन रह करके जो देखता है केवल, है ना। तो आप जब शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, मौन रह करके आप केवल देखिए, है तो आपको दिखाई देगा कि कितनी तेजी से गुजर रहा है, कितनी तेजी चल रहा है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं उसे मुक्त हुआ समझिए, तो वो उसको मुक्त समझना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में ही कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है कि सुख दुखों से ऊपर उठ सकता है, शरीर से ऊपर उठ सकता है, सर्दी गर्मी से ऊपर उठ सकता है। आगे मुक्त आत्मा का असली गुण यह है कि वो माया के कर्म बंधन से अविचलित रहकर कृष्ण भक्त बना रहता है ना। तो अविचलित, अविचलित का मतलब यही है कि सुख में भी विचलित हो जाता है, जब सुख मिलता है तो जाप बंद हो जाता है ना, अब तो जाप करने की आवश्यकता नहीं, सब प्रकार के सुख मुझे मिल गए, है ना। और जब दुख मिलता है तो जाप बंद हो जाता है, इतना दुख मिल रहा है मैं कैसे जाप करूं, अभी इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है मैं कैसे जाप करूं, है ना। तो ये सब जो है सुख दुख मान अपमान, इनमें व्यक्ति जो है जाप बंद कर देता है, हरे कृष्ण का जाप बंद कर देता है, कथा सुनना बंद कर देता है, सत्संग बंद कर देता है ना। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो अविचलित रहकर कृष्ण भक्त बना रहता है, आगे ऐसा मुक्त पुरुष सदैव प्रसन्न रहता है, उसे ना तो शोक होता है और ना किसी वस्तु की इच्छा होती है, ना सोचती ना कांक्षती, है ना। तो प्रसन्नता एक अलग चीज है, ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्नता एक अलग चीज है। और सुखों में व्यक्ति जो विचलित हो जाता है और फिर दुखों में उद्विग्न हो जाता है, तो ये अलग चीजें हैं। जो प्रसन्नता है वो एक ऐसी चीज होती है जो सदा रहती है, ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा। आगे, चूंकि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु को देने वाले हैं, अतः जीवात्मा को उन्हीं पर आश्रित रहकर अपने इंद्रिय तृप्ति हेतु ना तो विरोध करना चाहिए ना कोई वस्तु स्वीकार करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि चूंकि परमात्मा परमेश्वर प्रत्येक वस्तु को देने वाले हैं, तो प्रत्येक वस्तु देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए आवश्यक है। तो आवश्यकता तो भगवान पूरी करते हैं, ये कामना पूरी नहीं करते। कामना का तो कोई अंत ही नहीं है, है कि नहीं। दुष्पूर्णा न लेने चाह, कामना तो अग्नि के समान है कि जिसमें आप जितना घी डालो उतना और बढ़ती है। तो भगवान कामना की पूर्ति नहीं करते हैं, भगवान तो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो जो भक्त है तो वो ये देखता है कि भगवान आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। तो वो अपनी कामना की पूर्ति नहीं भगवान से कराना चाहता, कि कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती, है ना। काम तो अग्नि के समान है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए आश्रित रहकर अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु ना तो विरोध करता है, इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ रही है इसलिए वो जो है ना तो विरोध करता है और ना आकांक्षा करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे जो है ये चाहिए वो चाहिए, तो ना तो विरोध करता है ना तो द्वेष करता है, जो कुछ मिला स्वीकार कर लेता है और जो नहीं मिला उसके लिए इच्छा नहीं करता है, कामना नहीं करता है। तो ये दोनों बातें हैं। आगे, अपितु प्रत्येक वस्तु को ईश्वर का अनुग्रह मानते हुए प्राप्त करना चाहिए, ये भी कृष्ण की कृपा है, और समस्त परिस्थितियों में स्थिर चित्त बने रहना चाहिए। तो ये जो है यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो भगवद गीता में बहुत से श्लोक हैं जिनमें तीन गुणों का वर्णन हुआ है, जैसे कि तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 5 है, जिसमें भगवान कहते हैं कि नहि कश्चित् क्षणम् अपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यतेह सहकर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे, कि जो जीव है कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब वो कर्म नहीं करता है। तो हर व्यक्ति जो है प्रकृति के गुणों के वश में होकर के विवश होकर कर्म करता है, विवश अवश्य कर्म विवश होकर कर्म करता है। तो उस पर भी हमारा लेख छपा था, श्री भगवान ने कहा हमें। और तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 27 है, इसमें भी भगवान कहते हैं प्रकृति हे क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, है ना। तो बहुत विस्तृत बातें हैं इसमें जो हमने लिखी हैं, तो इसमें से कुछ पढ़ के मैं सुना रहा हूं। एक कठपुतली का उदाहरण आप सुनिए, कठपुतली का उदाहरण ध्यान से सुनिए। इस श्लोक संख्या 5 की व्याख्या में हम कठपुतली का उदाहरण दे चुके हैं। जिस प्रकार कठपुतली ऊपर से तो कार्य करती हुई दिखाई देती है, देखा कठपुतली को, ऊपर से तो कार्य करती हुई दिखाई देती है परंतु वास्तव में वो कुछ भी कार्य नहीं कर रही है, उसी प्रकार ऊपर से तो यही लगता है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर मन तथा इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो कोई भी जीवात्मा कार्य नहीं कर रहा है बल्कि प्रकृति के तीन गुणों से वो जिस प्रकार बंधा हुआ है उसी प्रकार कार्य कर रहा है। तो कठपुतली जो है तीन धागों से बंधी होती है, है ना, और जो सूत्रधार होता है उसकी उंगलियों में वो धागे बंधे रहते हैं, है ना। तो वो उंगलियों का जो है केवल क्या करता है, केवल थोड़ा सा चलाता है उंगलियों को, है ना, उंगलियों के इशारे मात्र से कठपुतली जो है खड़ी होती है, कभी बैठती है, कभी नृत्य करती है, है ना। तो कितनी कितनी चेष्टाएं करती है कठपुतली, केवल तीन धागों का कमाल है, है ना। उसी प्रकार से जो जीव है ये तीन गुणों से बंधा हुआ है, तीन धागे, है ना, वो दिखाई नहीं पड़ते। कठपुतली जो है जिन तीन धागों से बंधी हुई है वो दिखाई नहीं पड़ते, धागे बहुत सूक्ष्म होते हैं ना, पास से दिखाई पड़ेंगे लेकिन दूर से तो वो भी नहीं दिखाई, कठपुतले दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो तीन गुण हैं ये हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन तीन गुणों से प्रत्येक जीव बंधा हुआ है और तीन गुण ही कार्य करा रहे हैं उससे, कठपुतली सुधा प्रयास नहीं करती। तो इसका जो है काफी विस्तृत इसमें चर्चा हुई है। अच्छा आप सुनिए, ये शरीर पिछले जीवन की इच्छाओं के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो हमारा शरीर है ये पिछले जीवन की इच्छाओं से प्राप्त हुआ है, इसको समझना है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म कर रहा है, तो फिर अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं। एक प्रश्न उठता है, अगर तीन गुणों के द्वारा ही सब विवश होकर कर्म कर रहे हैं तो अलग अलग जीवों को अलग अलग कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पिछले जीवन में जिस जीव ने तीनों गुणों की जितनी जितनी मात्रा का संग किया था, तीनों गुणों के समुच्चय के अनुसार उसे समय शरीर प्राप्त हुआ है। जीवात्मा की स्वतंत्रता केवल इसी बात में है कि वह चाहे जिस समय जिस गुण का संग करे, इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप उसे अपना जब अगला शरीर प्राप्त होता है तो वह तीन गुणों के उसी समुच्चय के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है जिसका उसने पिछले जीवन में संग किया था। समुच्चय समझते हैं, समुच्चय है हाँ मतलब मिश्रण, मिश्रण और अलग अनुपात में तीन गुणों का मिश्रण है ना, तो उसको समुच्चय बोलते हैं। तो तीन गुणों का संग किया है तो जिस अनुपात में आपने तीन गुणों का संग किया है तो वो जो समुच्चय हो गया तीन गुणों का उसके अनुसार आपको ये शरीर मिला है। अब आप उन तीन गुणों के अनुसार आप कर्म करने के लिए बंधे हुए हैं, बाध्य हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये है, अब सुनिए, शरीर की वायुयान से तुलना। वायुयान क्या, वायुयान जानते, हवाई जहाज एयरप्लेन है ना। श्री प्रभुपाद इस भौतिक शरीर की तुलना वायुयान के साथ किया करते थे। पिछले जीवन में अर्जित गुणों के समुच्चय के अनुसार हमें यह शरीर तथा स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः इस जीवन में हमें इस शरीर और स्वभाव के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। इस जीवन काल में हम अपने शरीर तथा स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं, अतः अपने कर्मों को भी बदल नहीं सकते हैं। ये उसी प्रकार से है कि जब एक बार आपने किसी विशेष उड़ान के लिए वायुयान तय कर लिया तथा उस वायुयान में आप बैठ गए हैं तो अब बीच में आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इस उड़ान से नहीं जाना है, आप नहीं कह सकते हैं। अब आपको उसी वायुयान की अंतिम गति तक जाना ही होगा, इस विषय में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परंतु हाँ, इस समय की उड़ान के समय अपनी इच्छा के अनुसार आप अगली उड़ान निश्चित कर सकते हैं तथा अगली उड़ान के लिए आपको दूसरा वायुयान प्राप्त करना होगा। उसी प्रकार भौतिक शरीर में रहते हुए जीव पिछले जीवन के इच्छाओं से बने शरीर और स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, परंतु इस जीवन की इच्छाओं के कारण उसे अगला शरीर प्राप्त होगा। इसमें काफी चर्चा है, इस तीन गुणों के विषय में काफी चर्चा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और श्लोक संख्या 28 में भी भगवान ये बताते हैं, तत्ववित्तो महाबाहो, नहीं ये हाँ ठीक है, तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं ये मान करके वो उनमें आसक्त नहीं होता है तीन गुणों में, है ना। तो इसमें भी जो है काफी रोचक चर्चा हुई है। अच्छा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, तीन भाइयों का उदाहरण सुनिए, ये बड़ा रोचक है। अब हम एक ऐसे उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें तीन भाइयों ने तीन अलग अलग गुणों का संग करके अलग अलग बंधन प्राप्त किए। ये उदाहरण है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। कुछ लोगों को नींद आ रही तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि भाई सोए नहीं, तो कुछ कुछ रोचक कथा सुनाए। ये मेरी किताब से कितने लोगों ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है? ये तो उदाहरण नहीं पढ़ा किसी ने, इसलिए तो कोई किताब पढ़ता नहीं मेरी, मेरी कोई किताब पढ़ता नहीं है। अच्छा सुनिए, ये उदाहरण है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। इन तीन भाइयों में से विभीषण ने शत्रुगुण का संग किया, अर्थात तो उसने तपस्या की ताकि उसका मन सदा धर्म में ही स्थित रहे, ये शत्रुगुण। इसके परिणाम स्वरूप विभीषण को शत्रुगुण का बंधन प्राप्त हुआ, ज्ञान। शत्रुगुण का बंधन है ज्ञान। इस ज्ञान के बंधन के कारण उन्होंने श्री राम की शरण ली। ये भी एक बंधन था, लेकिन बंधन में व्यक्ति ऊपर उठता है ना, अपनी शक्ति नहीं है ऊपर उठने की, लेकिन सत्वगुण से बंध जाता है व्यक्ति, ज्ञान से बंध जाता है तो ऊपर उठता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति। तो सत्वगुण से वो बंध गए तो कहां पर पहुंचे, श्री राम के शरण में आ गए, है ना। अब हम रावण के कार्य पर विचार करेंगे। रावण ने क्या किया? रावण ने रजोगुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की ताकि उसे अधिक से अधिक भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इसके परिणाम स्वरूप रावण को रजोगुण का बंधन प्राप्त हुआ, लोभ और तृष्णा। इस लोभ और तृष्णा के कारण उसने अपने आप को बहुत बड़े संकट में डालने वाला कार्य किया। वो कार्य था सीता जी का अपहरण। ये भी एक बंधन है ना। अब कुंभकर्ण ने क्या किया? उसने तमोगुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की ताकि वो सदा अपनी इच्छा के अनुसार अन्यों के लिए विनाशकारी कर्म करे। इसके परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण को तमोगुण का बंधन प्राप्त हुआ, निद्रा और आलस। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव जिस गुण का संग करता है वही गुण उसे ऐसे कार्यों से बांधता है जिन्हें वो करना नहीं चाहता है। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की, लेकिन बहुत विस्तृत चर्चा है और बहुत रोचक बातें हैं तीन गुणों के विषय में। तो हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे, अभी जो चल रहा है वो इंद्र और वृत्रासुर का प्रसंग चल रहा है। तो वृत्रासुर जो है इंद्र को वो शिक्षा दे रहे हैं, सोचिए कितना ये जो है ऊंचा ज्ञान है इंद्र को मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है? वृत्रासुर के द्वारा मिल रहा है ना। अब अगर आप विचार करें कि इंद्र के गुरु वैसे कौन है, बृहस्पति हैं, देवताओं के पुरोहित हैं बृहस्पति, है ना। तो वो एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति किसी का गुरु होता है उसको जो है संस्कार प्राप्त होते हैं और धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और उसको पवित्रता के नियम प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन जो शिक्षा है भगवद गीता की शिक्षा है वो किसको किससे प्राप्त हो वो हम नहीं जानते। आप समझे, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण से जब प्राप्त हुई गीता की शिक्षा तो एक अलग ही स्थिति, सोचा ही नहीं था पहले, पहले से नहीं सोचा था है? अर्जुन को भी पता नहीं था कि उनको किस समय आवश्यकता होगी, हरि बोल, उनको किस समय आवश्यकता पड़ेगी इस शिक्षा की। तो ऐसी स्थिति में जो है गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ, जबकि कृष्ण जो है अर्जुन के गुरु के पद पर नहीं है, वो तो मित्र हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा है, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपको किससे प्राप्त होगी, किस समय प्राप्त होगा, ये ज्ञान जरूरी नहीं है। इंद्र भी जो है, इंद्र को ये ज्ञान वृत्रासुर से अभी प्राप्त हो रहा है ना। जबकि इंद्र क्या है, भोगों में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं। तो जब दधीची मुनि के पास ये ज्ञान था तो देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार दधीची मुनि के पास आए, देवताओं के डॉक्टर दधीची मुनि के पास आए कि हमें आप ये ब्रह्म ज्ञान दीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। तो दधीची मुनि ने कहा कि ठीक है, आप कल आइए, मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान दूंगा, अध्यात्म विद्या मैं प्रदान करूंगा। इंद्र को पता चला तो इंद्र को जो है ईर्ष्या हुई, देवताओं के वैद्य हैं तो देवताओं से जो है ये नीचे के धरातल में हैं, देवताओं के बराबर नहीं है, ये वैद्य है। तो जो डॉक्टर हैं उनको जो है समाज से नीचे माना जाता है, ये लोग नीचे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं को जो है बीमारियां नहीं होती, इसलिए जहां बीमारियां होती हैं तो डॉक्टरों को सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। तो कलयुग में जो है बीमारियां बहुत होती हैं तो डॉक्टरों को बहुत सम्मान मिलता है, देवताओं के डॉक्टर डॉक्टर हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है ना। तो इंद्र को जो है इंद्र ने जो है नियम बना दिया, ये देवताओं के साथ में यज्ञ का भाग नहीं प्राप्त करेंगे, इनको जो है सोमरस नहीं दिया जाएगा देवताओं के, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, ये लोग जो है निम्न स्तर के लोग हैं ये, है ना। तो फिर दधीच मुनि से इंद्र ने कहा कि आप इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना, क्यों? कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तो हमसे ऊपर उठ जाएंगे, देवताओं से ऊपर उठ जाएंगे, है ना, और ये लोग तो देवताओं के नीचे इनका स्थान है। तो दधीच मुनि बोले कि देखो वो आएंगे, मैंने उनको वचन दिया है, मैं तो उनको ज्ञान दूंगा। इंद्र ने कहा कि अगर आप उनको ज्ञान दोगे तो मैं आपके सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा, आपके सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। तो दधीच मुनि बड़े चिंतित हुए। अब अगले दिन जब आए अश्विनी कुमार, बोले दधीच मुनि से कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, हम आपके पास आ गए हैं। दधीच मुनि ने समस्या बताई कि देखो इंद्र ने तो हमको धमकी दी है, अगर मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दूंगा तो वो मेरे सिर के 100 टुकड़े कर देगा। अश्विनी कुमार बोले इसकी तो आप चिंता मत करो, हम तो डॉक्टर हैं, हम किस लिए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अभी क्या करते हैं आपका सिर काट करके अलग रख देते हैं सुरक्षित है? और आपके सिर की जगह एक घोड़े का सिर लगा देते हैं, उस सिर से आप ज्ञान का उपदेश देना, क्योंकि दिव्य ज्ञान तो हृदय में होता है ना, आत्मा हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो सिर बदल जाए दिमाग बदल जाए उससे ज्ञान नहीं बदलता है, आत्मा तो हृदय में है, तो आपका सिर काट करके हम सुरक्षित रख देंगे और घोड़े का सिर लगा करके आपको जो है जीवित कर देंगे, आप उसके द्वारा आप हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, और जब इंद्र जो है आपके सिर के 100 टुकड़े कर देंगे तो आपका जो है जो सिर हमने सुरक्षित रखा हुआ है वो आपको दोबारा लगा देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप समझे, मतलब इतना उन्नत है देवताओं का चिकित्सा विज्ञान, इतना उन्नत है आज के चिकित्सा विज्ञान में, अभी शायद ये कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो उन्होंने फिर ऐसे ही किया, तो घोड़े के सिर से उन्होंने जो है जो विद्या प्रदान की वो अश्वसेना विद्या कहलाई, क्योंकि घोड़े के सिर के द्वारा उन्होंने वो उपदेश दिया था, तो अश्वसेना विद्या उसका नाम पड़ गया। और इंद्र ने जब उनके सिर के 100 टुकड़े कर दिए, अश्विनी कुमारों ने फिर दधीच मुनि का सिर लगा दिया और जो है बिता ली, और वो समझो दक्षिणा भी हो गई उनकी, गुरु दक्षिणा भी हो गई। तो इस तरह से वो चले गए। फिर जब वृत्रासुर का खतरा पैदा हुआ देवताओं के लिए और देवता लोगों ने भगवान की शरण ली, तो भगवान ने जो है, भगवान तो देवताओं का कष्ट दूर करते हैं और भगवान स्वयं वृत्रासुर का वध कर सकते थे, लेकिन भगवान ने स्वयं वृत्रासुर का वध नहीं किया, बल्कि क्या कहा, दधीच मुनि के पास जाऊं। अब जिन दधीच मुनि के सिर के तुमने 100 टुकड़े किए थे, कितना बड़ा अपराध किया तुमने, है ना, अब उनके सामने जाओ और याचना करो, उनसे छोटे बन के याचना करो। तो भगवान की ये योजना थी, और इंद्र नहीं चाहते थे, ये बड़ी लज्जा की बात थी इंद्र के लिए कि दधीच मुनि के पास जाए, लेकिन भगवान का आदेश नहीं, और कोई उपाय नहीं है, भगवान के पास हजारों उपाय हैं, लेकिन भगवान का नहीं, और कोई उपाय नहीं है, तो भगवान चाहते थे कि उनके चरणों में गिरो तुम, इसलिए सिर के 100 टुकड़े किए उनके कि उन्होंने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, कितना गलत है, तो फिर इंद्र जो है सब देवताओं के साथ गए, दधीच मुनि के चरणों में गिरे, बड़े लज्जित थे, और दधीच मुनि ने जो है अपना शरीर छोड़ दिया और उनके हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, और अब वज्र जो है लेकर के इंद्र आए हैं वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए, और उनको जो है अभी मृत्यु से भय लग रहा है, वृत्रासुर से भय लग रहा है, है? तो वृत्रासुर जो है उसको इंद्र को इस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो ये वही ज्ञान है। दधीच मुनि ने अश्विनी कुमारों को दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो उपदेश जो है वृत्रासुर इंद्र को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के विषय में, आज इस श्लोक के विषय में हमने जो चर्चा की है, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंड माइक है, हैंड माइक। अच्छा हाँ, जोर से बोलते हाँ। देखिए, पिछले जीवन के कर्म के अनुसार हमारे जीवन, हमारा ये जो जीवन है ये निश्चित हो गया है, ये शरीर निश्चित हो चुका है, शरीर के साथ मृत्यु भी निश्चित हो चुकी है। मृत्यु जन्म बदाम भी देह न सह जायते, मृत्यु भी निश्चित हो चुकी है शरीर की, कब होगी कहाँ होगी, है ना, सब कुछ निश्चित हो चुका है। लेकिन फिर भी आपके प्रयास से कुछ बदल सकता है, थोड़ा बहुत बदल सकता है, और बहुत कुछ भी बदल सकता है, काफी परिवर्तन हो सकता है, जो होना है तो वो जो है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, सूली का कांटा भी बन सकता है, आप समझे। बल्कि एक घटना जो है, कई बार मैं बता चुका हूं कि एक व्यक्ति था जो बहुत भजन करता था भगवान का, और कोई गलत काम नहीं करता था, तो वो हमेशा निर्धन रहता, उसे दुख मिलते हैं बहुत। और जो दूसरा पापी था, वो जो है हमेशा गलत काम करता था, और उसको जो है हमेशा सुख मिलते थे, और वो बहुत धनी था, तो वो हमेशा चढ़ाता था कि देख तू हमेशा भजन करता है भगवान का, तुझे क्या मिल रहा है, तो दुखी है, तो निर्धन है, और देख मैं हर तरह गलत काम करता हूं, मैं कितना सुखी हूं। तो बेचारा बड़ा दुखी होता था। और एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते में चलते चलते उसको ऐसा कांटा लगा कि पैर के अंदर घुसा बहुत गहरा, तो उसको लगा कि अब तो मतलब मौत जैसा उसको कष्ट हुआ, तो बड़ा कष्ट पा रहा था। वहीं पर आया वो व्यक्ति और उसको हीरा मिला, फिर से चढ़ाया, देख तू भजन करता है, तुझे क्या क्या मिला, कांटा है, मरने जैसा कष्ट हो रहा है, और मैं सब गलत काम करता हूं, मुझे क्या मिला, हीरा मिला। अब तो बड़ा दुखी हुआ वो, तो एक पेड़ के नीचे जो है एक साधु थे, योगी थे, तो उनके पास जाकर के उसने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और ये मुझे हमेशा चढ़ाता है, हैं, और मुझे अभी कांटा लगा, हाँ मुझे मरने जैसा लग रहा है, और इसको हीरा मिला। तो उस योगी ने कहा कि देखो तुम्हें तो आज के दिन सूली में चढ़ना था, पिछले कर्मों के अनुसार तुमको आज के दिन सूली में चढ़ना था, तो सूली का क्या हो गया, कांटा, क्यों, तुम भजन करते हो, है ना, और आज के दिन पिछले कर्मों के अनुसार इसको राजा बनना था, तो इसको क्या मिला, हीरा मिला, कितना कम हुआ, आप समझ रहे। तो इस तरह से अगर हम जो है वैष्णवों का अपराध करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो आयु क्षीण होती है, आयु घटती है, आयु भी घटती है, यश भी घटता है, धन संपत्ति घटती है, लेकिन तुम्हें अगर मिल रहा है तो ये सोचो कि मिलना जितना था उससे बहुत कम मिल रहा है, आधा मिल रहा है, चौथाई मिल रहा है, बहुत मिलना था, लेकिन वो प्रभाव ऐसा है माया का कि वो सोचता है मैं देखो कितना गलत कर रहा हूं, उससे मुझको और सुख मिल रहा है, आप सुन रहे। और जो व्यक्ति कृष्ण का भजन कर रहा है ना, उसको दिखाई देता है कि देखो मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं, मेरे ऊपर ये विपत्ति आ रही है, मेरे ऊपर ये संकट आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर एक दूसरी दृष्टि है, उससे अगर देखें तो आप सोचेंगे कि कृष्ण की कृपा से मुझे बहुत कम मिल रहा है, मुझे बहुत कष्ट मिलना था, बहुत कम हो गया मुझे। अब कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया और बाहर निकला और एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया, तो एक सोचने की विधि ये भी है कि देखो मंदिर में आया और मंदिर में आने की वजह से ही मेरा पैर टूटा, और दूसरी विधि ये भी है सोचने की कि मंदिर में आया तो भगवान कितनी कृपा हुई कि जान बच गई, मर गए होते तो पैर ही टूटा, भगवान की कृपा है, तो ये सोचने की विधि है, ठीक है ना। तो हालांकि निश्चित हो चुका है पिछले कर्मों के अनुसार आपका जीवन में क्या मिलना है, लेकिन तो भी बहुत कुछ थोड़ा बदलता है, ज्यादा बदलता है, बहुत ज्यादा भी बदल जाता है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ जी हाँ हाँ अच्छा इस पुस्तक में जो है हमने वो भी चर्चा की है कि हम बदल नहीं सकते हैं लेकिन तो भी हम जब प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ सफलता मिलती है हालांकि बंधे हुए हैं हम है ना लेकिन तो भी सफलता मिलती है और इस तरह से आप जो है धीरे धीरे तदा रजस्तमो भावा काम लोभा ये चेत ए तैरना विधम स्तम सत्व प्रसिद्धि रजोगुण तमोगुण के भाव हैं उनसे चित्त जो है चित्त में आते हैं लेकिन चित्त आविद्य नहीं होता है हैं? और सत्वगुण में चित्त प्रसन्न हो जाता है और फिर समता की स्थिति आ जाती है ना तो ये जो है सत्वगुण का ही समझो कार्य है कि आप समता की स्थिति में आ गए आप समझे ना तो सत्वगुण का विकास करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है हालांकि आप बंधे हुए हैं लेकिन तो भी आप जो है इस भक्ति की विधि से आप ऊपर उठ सकते हैं ठीक है ना हाँ जी भगवान ये बताते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्य एवं पापम अवाप्स्यसि कि सुख दुख समान समझ करके इसका मतलब ये है कि आपका जो स्वभाव है वो है और वो स्वभाव क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो चार वर्ण है तीन गुणों के द्वारा ही जो है चार वर्ण ये बने हैं और ये जो स्वभाव बना है तो स्वभाव है ये इस प्रकार का तो ये क्या है ये बुद्धि के हिसाब से है ये बुद्धि में ये गुण है लेकिन मन को अगर आप जो है शुद्ध कर लेते हैं तो शूद्र का भी आप कर्म करते हैं तो सत्वगुण में हो सकता है आप समझे तो मन जो है अगर आप मन को आप तीन गुणों से ऊपर उठा लेते हैं या सत्वगुण में ले आते हैं तो बुद्धि रजोगुण में होने के कारण वो क्षत्रिय का कार्य आप कर रहे हैं आप समझे लेकिन जो मन है वो आपका क्या हो गया ऊपर उठ गया है आप समझे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है तो वो जो है उसकी बुद्धि में रजोगुण है बुद्धि में रजोगुण है इस कारण से वो जो है प्रजा पर शासन करता है और अपना राज्य बढ़ाना चाहता है अपना अधिकार बढ़ाना चाहता है सब कुछ है ये लेकिन तो भी जो है मन चूंकि उसका तीन गुणों से ऊपर उठ गया है तो वो सब चीजों में समान इसलिए वो समान है आप समझे तो तीन गुणों के अनुसार कर्म हो रहे हैं लेकिन तो भी वो तीन गुणों से ऊपर भी है क्योंकि मन की जो स्थिति है वो अलग है आपका शरीर तीन गुणों से बना हुआ है बुद्धि में तीन गुण है ना तो बुद्धि में सत्वगुण होने के कारण आप ब्राह्मण में हो सकते हैं और मन में अगर तमोगुण है तो ब्राह्मणी कर्म भी आप तमोगुण में कर रहे हैं आप सुन रहे इसलिए भगवान गीता में यज्ञ दान तपस्या ये कर्म भी है बताते हैं तीन गुणों में होते हैं तो भी तपस्या भी ब्राह्मण का जो है स्वाभाविक कर्म है लेकिन तो भी वो तमोगुण में कर रहा है तो क्यों मन अगर मन जो है तमोगुण में है और बुद्धि सत्वगुण में आप समझ रहे हैं तो बुद्धि सत्वगुण में तो बहुत मतलब काम करती है बुद्धि बहुत काम करती है लेकिन मन तमोगुण में है तो विनाशकारी कार्य जैसे आजकल के वैज्ञानिक हैं विनाशकारी कार्य में लगे हुए हैं तो कारण क्या है बुद्धि तो सत्वगुण में है इसलिए बहुत रिसर्च कर रहे हैं और काफी विज्ञान उन्नति कर रही है लेकिन मन तमोगुण में मन तमोगुण में होने के कारण वो विनाशकारी दिशा में वो कार्य हो रहा है आप समझ रहे हैं मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो तो मन ही जो है मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है बुद्धि नहीं आप समझ रहे हैं तो बुद्धि के कारण जो है चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लेकिन जो है ये चारों के चारों जो वर्ण है वो सत्वगुण में कार्य कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं ठीक है ना आपका प्रश्न है इसकी चर्चा हमने की है कि सत्वगुण को जो है जब कोई व्यक्ति भोगना चाहता है शत्रुगुण को कोई व्यक्ति अगर भोना चाहता है तो बड़ा अच्छा है इसमें, लेकिन अभी समय कम है। आप इसमें से आप देखना जो 27वां अध्याय 27वें श्लोक पर जो मैंने लेख लिखा है उसको आप देखना कि शत्रुगुण को व्यक्ति भोगना चाहता है तो उसको फिर बंधन कैसा प्राप्त होता है, जबकि वो नहीं चाहता है तो फिर उसको बंधन प्राप्त होता है। शत्रुगुण को भोगना चाहता है, शत्रुगुण को भोगना चाहता है कि भाई मैं जो है धर्म के रास्ते पर चलूं हमेशा, तो वो शत्रुगुण को भोगने की इच्छा है और उसका जो है बंधन क्या होता है वो ऊपर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है ना। रजोगुण में क्या है कि वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, ज्यादा ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करूं, रजोगुण को भोगना चाहता है, और उसका जो परिणाम परिणाम क्या होता है लोभ, अब वो नहीं चाहता है लेकिन उसका बढ़ता जा रहा है ना? तो ये अब उसकी व्यवस्था है, वो बन गया उसमें, जिसको उसने सोचा नहीं था कि मैं बनूंगा लेकिन वो बन गया उसमें ना। तमोगुण को भोगना चाहता है, विनाशकारी कार्य करना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार, जो चाहूं वैसा करूं मैं, तो ये भोगने की इच्छा है, ये उसको पता नहीं कि इसमें बंधन है और बंधन क्या होता है उसको निद्रा आलस्य अज्ञान, जिसको पुरस्कार मिलेगा, वो नहीं चाहता है लेकिन वो मिलेगा उसको, ये तमोगुण का पुरस्कार है, उसमें बंधे हैं। अच्छा आपका प्रश्न है, तीन गुणों के कारण होता है कि तीन गुणों के कारण ही आपको ये शरीर मिल रहा है और तीन गुणों के कारण ही कार्य हो रहे हैं। वास्तव में हम जो है जीव आत्मा वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम तो तीन गुणों का संग कर रहे हैं और कार्य जो है वो तीन गुण ही मतलब करते हैं। जैसे कि तीन रस्सियां हैं है ना, तो एक रस्सी को आप पकड़ते हैं और वो रस्सी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने पकड़ लिया है तो ये रस्सी आपको ऊपर ले जाएगी, ठीक है ना। तो सतोगुण की रस्सी है, अगर आप उसको पकड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ ले जाएगी। अब आप तो ऊपर नहीं जा रहे हैं लेकिन ये रस्सी आपको ऊपर ले जा रही है ना। रजोगुण की एक रस्सी है तो वो जो है इस धरातल में ही आपको इधर उधर ले जाती है, आपने पकड़ लिया तो वो जो है आपको ले जाएगी कहाँ कहाँ घुमाएगी, है ना। तमोगुण की एक रस्सी है वो नीचे की तरफ जा रही है, आपने पकड़ लिया अब वो नीचे आप जा रहे हैं, है ना। तो अज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तमोगुण का अगर आप संग करते हैं, रजोगुण का संग करते हैं तो लोभ, फिर लोभ ही लोभ बढ़ता है, इंद्रिय तृप्ति है ना बढ़ता है, और सतोगुण का संग करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये जो है तीन गुण है, इसलिए हमें जो है इनका लाभ उठाना चाहिए। तो सतोगुण का जो है अगर आप संग करते हैं तो ऊपर की तरफ आप जाएंगे, ठीक है ना। आपका प्रश्न है, आखिरी प्रश्न बस इसके बाद में, हाँ तीन प्रश्न, तीन प्रश्न से एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। हाँ मन, वैसे तो मन बुद्धि दोनों पिछले जन्म के अनुसार बन चुके हैं ना, लेकिन आप अगर भक्तों का संग करते हैं तो मन जो है आपका बदल सकता है और मन को जो है अगर आप प्रशिक्षित करते हैं तो वो गुण जो है वो बदलता है, अपने गुणों को बदलता है। तो मन ही जो है मतलब मुख्य कारण है, केंद्र बिंदु है बंधन और मुक्ति का, ठीक है ना। इसलिए बुद्धि में अगर बहुत अज्ञान भी भरा हुआ है व्यक्ति और आध्यात्मिक विषयों को ज्यादा नहीं समझ पाता है, लेकिन तो भी वो जो है अगर वो सेवा कार्य में लगा हुआ है, मन उसका अगर शुद्ध है सतोगुणी है तो वो जो है मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति है वो जूते सिलने वाला, जैसे जूते सिलने वाले एक था मोची था, है कि नहीं, तो जूता सिलता था, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था शास्त्रों का, है ना, लेकिन वो जब जूता सिलता था भगवान का नाम लेता था, है ना, तो उसको जो है फिर दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो गया उसको, ऐसा दिव्य ज्ञान। तो मन में ही जो है भगवान ज्ञान प्रदान कर सकते हैं उसको, आप समझे ना। तो बहुत ऊंची स्थिति, एक ब्राह्मण था वो तपस्या कर रहा है ना, लेकिन उसकी बुद्धि रजोगुण में है ना। तो नारद जी से पूछता है कि भगवान से जाकर के पूछो कि मैं कब आऊंगा, तो वो भगवान को भी प्रभावित करना चाहता है कि भगवान देखें कि मैं कितनी तपस्या कर रहा हूँ, हाँ, और भगवान कहें कि हाँ बड़ी जल्दी आएगा मेरे पास। भगवान ने कहा उसको तो करोड़ जन्म लगेंगे, करोड़ जन्म लगेंगे। तो रजोगुण में वो भगवान को भी प्रभावित करना चाहता है कि भगवान देखें मैं कितना तपस्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ रजोगुण में। ब्राह्मण है, तपस्या कर रहा है, तपस्या करने की उसकी योग्यता है, सतोगुण में है ना बुद्धि, लेकिन मन रजोगुण में, इसलिए दिखावे के लिए वो सब दिखावे के लिए भी होता है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमन भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। हो हरे कृष्ण।